देश के सामने एक गंभीर संकट है, इसके प्रति हम जागरूक हैं, हमें अपार उत्साह है, बेहद उत्तेजना है, लेकिन शायद अभी तक हम यह ठीक ठीक आंक नहीं पाए हैं कि संकट की जड़ कितनी गहरी है, इसकी शाखाओं का विस्तार कितना भयावह है। देश के सामने बहुत बार बहुत से संकट आए हैं, ऐसी पेचीदी समस्याएं सामने आई हैं जिनका हल मुश्किल था, हमने उन्हें सुलझाया है। आज से 15 साल पहले जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा हमारी क्या स्थिति थी? हमारी सामाजिक व्यवस्था में ऐसी निर्बलताएं अंतर्निहित थी, ऐसी बुनियादी कमजोरियां थी जिनके रहते वर्तमान टेक्नोलॉजी से हम पूरी तरह लाभ नहीं उठा सकते थे। हमारी ग्राम अर्थव्यवस्था जर्जरित हो टुकड़े टुकड़े हो रही थी, हमारे उद्योगों में संतुलन नहीं था, विकास उन्मुख नहीं थी, आयोजन नहीं था, सारी स्थिति ऐसे एक बड़ी चुनौती थी। हमने उसे स्वीकार किया, अपने प्रधानमंत्री के प्रेरणादायक नेतृत्व में हमने स्थिति को अच्छी तरह संभाला है। नए भारत के निर्माण की जिम्मेवारी संभालते हुए हमने घोषणा की है कि चाहे जो हो, हम भारत के महान सिद्धांत का, इस सत्य का कि समाज और नियम अंततः व्यक्ति की आजादी और सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए ही हैं, बलिदान नहीं करेंगे। और हमने औद्योगिक क्रांति को एक नई दिशा दी, हमने औद्योगिकरण के साथ एक ऐसा समझौता किया जिसके अंतर्गत वर्तमान टेक्नोलॉजी से लाभ उठाते हुए हम अपनी परंपरा और संस्कृति को अक्षुण रख सकें। 19वीं सदी में यूरोपीय देशों ने और 20वीं सदी में कम्युनिस्ट देशों में औद्योगिकता से जनता को जो पीड़ा पहुंची, मानवता का जिस प्रकार हनन हुआ, हमने उससे देश को बचाया। हमारा तरीका मानववादी तरीका था, उत्पीड़न जिससे न हो ऐसा तरीका था, इससे मनुष्य को बचा, लेकिन हमारी गति धीमी रही, हमारी औद्योगिकता में उन देशों जैसी तीव्रता नहीं आई। हमारी आजादी के साथ ही साथ चीन में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई, स्वभावतः उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। हमने मशीन का अबाध उपयोग नहीं किया क्योंकि बहुत मजदूर बेकार हो जाते हैं, चीन ने इसकी परवाह नहीं की, वे इन तमाम बेकार मजदूरों को सरकारी कारखानों में लगाते रहे, हर मजदूर की गतिविधि पर उनका आधिपत्य रहा, मजदूरी वे जो चाहे निश्चित कर सकते थे और ऐसी सत्ता थी उनकी कि उनके निर्णयों की अवहेलना संभव नहीं थी। इन रीतियों से उन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की और बहुत तेजी से चीन में औद्योगिकता पनपी और बढ़ी, लेकिन हमारी सफलताएं भी नगण्य नहीं हैं। गति हमारी धीमी अवश्य है, लेकिन यह निर्विवाद है कि हमारे सामाजिक और आर्थिक गठन पर समाजवाद की स्पष्ट छाप है। हम जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य है और उसमें व्यवस्था और पद्धति है। हम एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का नवनिर्माण कर रहे हैं जिसमें श्रम का उचित और न्याय संगत पारितोषिक मिले। हमारा गणराज्य सचेष्ट है कि अवसर की समानता देश के हर नागरिक को उपलब्ध हो। यह सच है कि हम देश की जनता को अभी तक अभावहीन, भयहीन, शिष्ट जीवन नहीं दे पाए हैं, लेकिन इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारा कदम बराबर उसी ओर बढ़ रहा है। मानव को मानव से अलग करने वाली, निहित स्वार्थ को पैदा करने वाली आर्थिक असमानता कम होती जा रही है। सामंतवाद यानी जमींदारी और जागीरदारी का खात्मा हो चुका है, पूंजीवाद पर रोकथाम है, सुविधा प्राप्त वर्ग की किसी टुकड़ी की यह हिम्मत नहीं है कि जनता को कुचलने की कोशिश स्वच्छंदतापूर्वक कर सके। अतः हमारी योजनाएं केवल आर्थिक विधियां नहीं है, उसमें हमारे प्राणों का स्पंदन है। युद्ध हो या शांति, इसमें खलल न जाए, यह हमारा प्रण है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि साम्राज्यवाद की मनोवृत्ति से प्रेरित युद्ध की सामरिक तैयारियों में लगने की अपेक्षा जनजीवन को ऊंचा उठाना अधिक श्रेयस्कर था, लेकिन जब हम शांति और निर्माण के कार्य में लगे थे, चीन में खतरा उभर रहा था, वही खतरा जो हम पर आज फट पड़ा है और जो आज दुखद घटनाएं हुई हैं उसकी रोशनी में हम दुश्मन की सच्ची शक्ल देख पा रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख समझ रहे हैं कि जो समस्या हमारे सामने वह कितनी भयावह है, कितनी विकराल है। शक्तिशाली और भयंकर शत्रु हमारे सामने है, ऐसा शत्रु जो एक सैनिक समाज की भट्ठी में तपा और पका है। उसका शरीर ही नहीं, उसका दिमाग, उसकी आत्मा सब एक निश्चित ढांचे में ढले हैं। उसने एक आजाद देश पर अकारण हमला किया है और आक्रमणकारी के रूप में हमारे देश में बढ़ने की चेष्टा कर रहा है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। लेकिन उसके सैनिक, उस देश की जनता सब ऐसा मानने और समझने के लिए बाध्य हैं कि भारत का साम्राज्यवाद से उद्धार कर रहे हैं। उसने घात किया है, लड़ाई घोषित किए बिना लड़ाई छेड़ दी है, लेकिन उसको यह अधिक विश्वास है कि वह भारत को मुक्ति दे रहा है। अजीब, बेढब और अनहोनी सी बात है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। इस विकराल संकट को हमें भली भांति समझना है, हमें इस पर ठंडे दिल से विचार करना है। हमारे सैनिक संसार के अन्यतम सूरों में से हैं, उन्होंने अपनी वीरता से हमें चमकृत किया है, वे हमारा आदर के पात्र हैं। हम इन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश की जनता में अपार उत्साह, अपार आक्रोश दिख रहा है, हमारे दिलों की धड़कनें आज एक हैं। लेकिन यह युद्ध हमें याद रखना है केवल सीमा का सवाल नहीं उठाता, इस युद्ध से उससे भी एक बड़े प्रश्न का संबंध है और वह प्रश्न हमारी स्वतंत्रता के लिए खतरा है। प्रश्न है कि क्या हमें, जो एक आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, अपना जीवन अपने ढंग से आजादी और प्रतिष्ठा के साथ विकसित करने का अधिकार है या नहीं। मित्रों और देशवासियों, यह अवसर गंभीर और कठिन अवसर है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि भारत के लंबे इतिहास में यह पहला अवसर है जब सारा देश हिमालय से कन्याकुमारी तक, आसाम से काश्मीर तक एक हो विदेशी आक्रमणकारी का मुकाबला कर रहा है। इस विचार से ही हमें स्फूर्ति मिलती है। समय रणभूरी की ओर संकेत कर रहा है और जैसे हमें कह रहा है कि हमें अपनी बहुमूल्य आजादी के लिए बलि देना है, प्राणों की बाजी लगाकर अपनी स्वतंत्रता की नींव मजबूत करना है। आज का युद्ध केवल रणभूमि में ही नहीं लड़ा जाता, हर खेत, हर कारखाना, बल्कि यूं कहिए हर घर इस युद्ध का मोर्चा है। हमें उत्पादन को बेहिसाब वृद्धि करनी है, सेवाओं की गति में तेजी और दक्षता लानी है। किसान हो या मजदूर हो या मालिक हो, आत्मभेद को डुबो देना है। इस भावना से प्रेरित हो कि हर एक को भारत माता की रक्षा के लिए अधिक से अधिक अनुदान देना है, उत्पादन की वृद्धि करनी है। आज हल्की बातों का मौका नहीं है, आज में मतलब आलोचना, संदेह, अफवाहबाजी और फुसफुसाहट का अवसर नहीं है। छोटी छोटी टुकड़ियों में बंधने वाले बंधनों को आज तोड़ फेंकना है। आज गुटबंदी और दलबंदी की मनोवृत्ति से ऊपर उठना है। आज डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग पकाने की मनोवृत्ति छोड़नी है। आज सारे भेदभावों को, आदर्श और सिद्धांत के तमाम झगड़ों को संपूर्णतः डुबो देना है। आज मनसा वाचा कर्मणा हमें एक, बिल्कुल एक होना है। इतिहास का पहला अवसर है जब हम इस प्रकार एक हो सकते हैं। आज की स्थिति की वह मांग है कि हमारे दिमाग एक हों और हमारा प्रधानमंत्री देश का एकमात्र नेता हो, ऐसा नेता जिसके नेतृत्व में हमें पूरी तरह आस्था हो। हम ऐसा कर सकें तो हमारी विजय निश्चित है। समाप्त करने के पहले परिवहन और संचार मंत्रालय के कर्मचारियों के बारे में दो शब्द कह लूं। उनकी देश भावना किसी से कम नहीं है। वे आज ऐसी सेवाओं के लिए, ऐसे उद्योगों के लिए जिम्मेवार हैं जिनका देश की सुरक्षा से सीधा संबंध है। बंदरगाहों के मजदूर, जल और स्थल परिवहन के चलाने वाले ऐसे लोग जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, ऐसे थल परिवहन के जिसका राष्ट्रीयकरण हो चुका है मजदूर, सिविल एविएशन विभाग के कर्मचारी, वायु परिवहन कंपनियों के कर्मचारी, जहाजी कंपनियां, डाक और तार विभाग, विदेशी तार और वायरलेस, सबको यह समझना है कि उनमें से हर एक अपने ढंग से मातृभूमि की रक्षा में जोग दे रहा है। मुझे विश्वास है कि आज कर्तव्य परायणता की भावना से वे उत्प्रोत हैं और उनमें न साहस की कमी है, न निष्ठा और लगन की। मेरे हृदय में उनके लिए बेहद सम्मान और आदर है। जय हिंद।